लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में कोट-कोट प्रणाम करते हुए मेरी अपनी अनुभूति से मेरे समस्त जो आप बैठे हैं हमारी बेटियां माताएं ये लक्ष्मी का स्वरूप है, हमारे पुरुष जो शुभ चिंतक है शिष्य है यह नारायण के स्वरूप है। मंदिर में उपस्थित प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए प्रभु के रूप में लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में आप भी मेरे सामने बैठे हैं तो आपको भी नमस्कार करते हुए गीता सुगीता पर विचार व्यक्त करना। हमारे ऋषियों ने कहा गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं पास कर सकते। बड़ी ही सुंदर बात है, तो शांति से सुने। हमारे आपके जीवन की बात है, जीने की बात है, कर्तव्य की बात है, हर तरह से हर व्यक्ति सफल बने, बलवान बने, नीतिवान बने और इतनी शक्ति प्राप्त हो कि न्याय के पक्ष में रहकर हम आप न्याय का भी सामना करें और विजय प्राप्त करें। आप सब एक विचार अपने मन में ले लें कि आपका जो विचार है अगर उसमें पवित्रता आ गई, शुद्धता आ गई, आपका विचार बालक जैसा पवित्र शुद्ध है तो विचार ही आपका कृष्ण स्वरूप है। इतना अच्छा विचार आपके पास है फिर भी जिम्मेदारी निभाते समय आप कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, यही आपके अर्जुन की स्थिति है। मेरे प्रिय आत्मन सिद्ध कर दूंगा कि विश्व में हर चीज अपनी जगह ठीक है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आप में भी है, आपके पिंड में है। अगर आप अपने शरीर को, इस पिंड को आप नर हैं कि नारी, अगर इस पिंड को समझ लें तो पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं पहले स्वीकार कर लो कि आप सब बलवान हैं, शक्तिमान हैं, पूरा ब्रह्मांड आप में है, भगवान कृष्ण भी आपके साथ हैं, नारायण भी आपके साथ हैं, शिव भी आपके साथ हैं, आपका जो भी सद्गुरु है वो भी आपके साथ है, सब आपके साथ है। लेकिन थोड़ा विचार करना, कृष्ण अर्जुन के साथ हैं लेकिन कहीं कर्तव्य पालन करते समय हमारी आपके मन की स्थिति ऐसी तो ना हो गई कि भगवान कृष्ण खड़े हैं हमारे साथ हैं, मेरे नारायण मेरे साथ हैं, मेरे शिव मेरे साथ हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरा गुरु मेरे साथ है, फिर भी कर्तव्य पालन के समय में कहीं हम अपना कांधियों रख करके सर नीचा करके बैठ तो नहीं गए हैं। बस आपका सिर ऊंचा करना है, विचार ऊंचा करना है, जन्म से आप ऊंचे हैं, पतित समाज मेरे सामने है, जन्म से आप ऊंचे हैं इसलिए आप ऊंचे हो सकते हैं। अगर हम जन्म से कमजोर होते या हमारे स्वभाव में कमजोरी होती तो विज्ञान भी कहता है कि नो पावर कैन चेंज द नेचर, कोई शक्ति बाय बर्थ यू आर द वीक, नो पावर कैन चेंज योर नेचर। आपका विज्ञान भी कहता है अगर जन्म से आप कमजोर हैं, अगर जन्म से आप हताश और निराश हैं, जन्म से अगर आपको ये स्वभाव मिला है तो कोई भी शक्ति आपको बदल नहीं सकती। हम और आप जन्म से शक्तिमान हैं, बलवान हैं, ईश्वर हमारे साथ है, नाम जो कुछ भी आप स्वीकार किए हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। नारायण बोलिए, शिव बोलिए, विष्णु बोलिए, कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, भगवान बुद्ध कहें, महावीर कहें, सहजानंद बोलिए, या अपने गुरु का नाम लीजिए, या पीर पैगंबर का, जो आप स्वीकार किए हैं उनको याद कीजिए, कहीं कोई खंडन नहीं है। विचार कीजिए आप जन्म से कमजोर नहीं हैं, लेकिन कमजोर हो कैसे जाते हैं? या विचार कीजिए अर्जुन बलवान है, शक्तिमान, एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अर्जुन बलवान होते हुए भी गांधी रख दिया, भगवान साथ में, आप मंदिर में क्यों आते हैं? माता पिता का आशीर्वाद क्यों लेते हैं? ब्राह्मण साधु संत वरियों को नमस्कार क्यों करते हैं? अपने गुरुदेव का दर्शन क्यों करते हैं? अपने इष्ट का स्मरण क्यों करते हैं? जबरदस्त ये वैज्ञानिक बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं सब चीज के पक्ष में हूं, आपकी कोठी बने, आप हर तरह से सुखी रहें, धर्मान बने, लेकिन संस्कारवान भी बने। आपकी श्रद्धा के अनुसार मंदिर भी होना चाहिए, समाज की सेवा भी करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं और पक्ष में, लेकिन सबसे पहले स्वीकार करता हूं कोठी बनाते समय, आश्रम का निर्माण करते समय, गाड़ी खरीदते समय, आप कितने लायक हैं, कितने योग्य हैं, इसलिए आप कोठी बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। आपके गुणों पर ये सब कुछ आपको ईश्वर भेंट में दे रहा है। आप कलेक्टर क्यों बने? आप एक अच्छे डॉक्टर क्यों बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, करोड़पति? ईश्वर ने आपकी योग्यता से ये सब कुछ आपको दिया, निमित्त कोई बने, लेकिन आपके अच्छे कर्मों से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब कहना क्या चाहता हूं वो सुनिए। तपस्या से सोने की लंका बनी। जबरदस्त तपस्या से लंकेश ने सोने की लंका बनाई, लेकिन मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, हे लंकेश, तेरी तपस्या से, तेरी शक्ति से सोने की लंका का निर्माण हुआ, लेकिन सोने की लंका बनने के बाद तू शैतान क्यों हो गया, तेरी इंसानियत क्यों गिर गई, तेरी तपस्या का दुरुपयोग क्यों हुआ। आप कोठी बनाए, आश्रम बनाए, तब के बल पर कलेक्टर कमिश्नर डॉक्टर बने, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, लेकिन एक प्रार्थना और करता हूं कि सफलता की प्राप्ति के बाद, सिद्धि के बाद, कहीं हम आधे आदमी न बन जाए, कहीं हम आधे शैतान न बन जाए, इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और फिर मनोविज्ञान कहता है, मैं सबके पक्ष में बाद में करूंगा, लेकिन अभी आपसे मैं कहता हूं, बड़े प्यार से कहता हूं, मैं अपना विचार दे रहा हूं, मैं किसी कोई ना सोचे कि कुछ और कह रहा हूं, मैं बात लेकिन पहले जो बताना चाहता हूं। मोहन भाई ने कहा, कबीरदास ने कहा, ये बात मैं बात में लूंगा, लेकिन पहले क्या बताना चाहता हूं वो आपको बताऊ। जा विचार करो, बड़े प्यार से कहता हूं, मैक्स मूलर कहां जन्मा, शोपेनहावर कहां जन्मा, थोरो कहां जन्मा, तुलसीदास का जन्म कहां, सूरदास का जन्म कहां, मीरा का जन्म कहां, इतिहास आप जानते हैं। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, उन्होंने अपने जीवन में गुणों की इतनी सुगंध पैदा की, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुए, जर्मनी में पैदा हुए या भारत में पैदा हुए, लेकिन इन लोगों ने हमारी आपकी तरह ही कोई अमीर घर में जन्मा, कोई गरीब घर में जन्मा, किसी के माता पिता अमीर हैं, किसी के माता पिता गरीब हैं, लेकिन इनके गुरु की सुगंध है, चाहे वो कली जन्मे, पूरे जिसमें फैली, मैकमूलर भवन केवल वहां नहीं बन रहा है, यहां भारत में भी है। हमारा विदेशों से संबंध है, अमेरिका गया भी हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर भी रखे गए, और आपको बताता हूं, विदेश में भी मुझसे बच्चों ने करोड़पतियों के इतिहास नहीं पूछा कि स्वामी जी आपके भारत में करोड़पति कौन है, पूछा कि शंकराचार्य जी कौन है, मीरा कौन है, तुलसीदास कौन है, कबीर कौन है, करोड़पतियों की चर्चा नहीं हुई, चर्चा हुई अच्छे इंसानों की, भक्तों की, अवसर नहीं। तो क्या आप नहीं हो सकते, हम एक संत हैं, हमने आश्रम बनाया, ईंट पत्थर वही है। मैं कहता हूं, संत बन करके आश्रम आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने एक संत के लिए आश्रम बनाया, तो आपकी कोठी में भी आप संत की तरह नहीं रह सकते। आपने भगवान का मंदिर बनाया, तो आपके घर में रहने वाले क्या भगवान के स्वरूप नहीं है? इसलिए आप और हम, बड़े प्यार से कहता हूं, एक अपने सद्गुणों के आधार पर अगर सुगंध आ गई, तो मैं कल्पना से नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, सत्य पर हकीकत बताता हूं, अच्छा व्यक्ति, अच्छा संस्कारवान जहां बैठेगा वही मंदिर बन जाएगा, संस्था बन जाएगी और किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं तकलीफ के पक्ष में, हमारे पास कितने लोग आते हैं बड़े प्यार से कहा, पोटरी वाले भी हैं, झोपड़ी वाले भी हैं, पुत्र वाले भी हैं, पुत्री वाले भी हैं, क्लास वन ऑफिसर भी हैं, क्लास कोर्ट भी हैं। आप सबकी शुभकामना आशीर्वाद से, मंत्रियों से संबंध है, राज्यपाल से संबंध है, प्रधानों से संबंध है, संपर्क है। लेकिन जब भी कोई मिलता है मनीषा मन पूछते हैं आप कैसे हैं, स्वामी जी आपकी बड़ी कृपा, और फिर लगते हैं लिस्ट बता रहे हैं, लड़की खाना नहीं मानती, कुर्सी का डर है, कुर्सी ऐसी है, मैं चाहिए तो मेरी कृपा है। पहले तो कहते हो कि गुरु जी आपकी, और फिर उनको सुनना मेरे से है, लेकिन मेरे से ज्यादा वही सुनाना चाहिए। मेरा तो कभी सुनते, मैं तो शायद पिक्चर में एडवर्टाइज करता हूँ और उनकी पिक्चर चालू होगा। फिर कहते हैं महाराज जिस समय का मैं दूसरी बार आऊंगा, मैंने कहा हुआ दूसरी बार आऊंगा। बात खत्म, बड़े प्यार से जो है इन बदन है, हमारे चाचा जी हैं डॉक्टर साहब, मेरे संपर्क आप होके देखिए ना के छो स्वामी जी तुम्हारी बड़ी कृपा सो के महाराज जी लड़का पड़ता नहीं, लड़की की शादी नहीं होती, शादी हुई है तो सास का कहना नहीं मानती। अरे भाई आप तो है ना, मैं कहता मेरी बात सुनिए, मेरा लड़का मेरा कहना नहीं मानता, है तो नहीं मानता, कभी तो मानेगा, जब है ही नहीं तो मानने का सवाल क्या होगा, है ही नहीं। एक बार महाराज जी कोठी बना के दुखी हो तो भीख मांगने वाला भी दुखी है, कोठी दुखी भी उठाना है तो कोठी बना के खाओ, ताकि भीख मांगने वाला भी तो कम से कम आप अगर 1 करोड़ की कोठी बनाते हो तो कितने गरीबों का गुजारा होगा, ये तो सोचिए, भीख मांगने से क्या होगा, भले दुखी हो लेकिन कोठी बनाओ, बैंक का लोन ले लो बनाओ, जो होगा देखा जाए, किसी काम का आएगा, मनी तो सर्कुलेट होगी। एक बात है, मेरी ये विचार था आपको तकलीफ में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दुख है तो उसका निवारण हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, या विचार करो। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबके मन में कुर्सी बनाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, पुत्र पुत्रियों के शादी के समय या सामाजिक व्यवहार में किसी तरह की भी निराशा हो तो आपसे बड़े प्यार से कहता हूं, आपका विचार ही कृष्ण है, अपने विचार में लाओ कि कैसी भी परिस्थिति हो, विकट से विकट परिस्थिति होगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने गांधी को, अपने कर्तव्य को अपने हाथ में रखूंगा, बगल में नहीं रखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, और फिर आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम रास्ता बताएंगे, बताएंगे सभी बताएंगे। तो ये जो आज का विषय रखा गया डॉक्टर साहब सलाह हुई, सलाह के 2-4 मिनट के बाद विचार हुआ कि आज के संदर्भ में गीता सुगीता की बात करें ताकि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ सके, उसका पालन कर सके और अपने जीवन को ऊंचा उठा करके समाज को भी आगे बढ़ाए। अर्जुन कमजोर नहीं है, अगर कमजोर होता तो फिर से कैसे बलवान बना, वो विचारों के बाद मेरे प्रिय आत्मन, आप पुत्र हैं कि पुत्री? जन्म से कोई कमजोर नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थिति का निर्माण इस तरह होता है कि आप कमजोर जैसे हो जाते हैं, कमजोर नहीं होते, कमजोर जैसे हो जाते हैं। तो जो कमजोर जैसे हुए हैं उसी जैसे को मैं हटा दूंगा और फिर वही वही आप हो जाएंगे। इसलिए मैंने गीता को गीता को रखा। हमारे और आपके बीच में हमारे और आपके बीच कितने अच्छे अच्छे बच्चे और बड़े प्यार से कहता हूं, मैं तो भारत की संस्कृति का सेवन हूं और उसको अपनाया है और बहुत अच्छा है। यहां जितने बैठे हैं मंदिर में सभी की बात करता हूं, सभी लगाते हैं, आप हैं, चाचा हैं, बेटी हैं, सब। एक छोटी सी बात करो, चाहे छबील दास की तरफ मुंह करो, चाचा की तरफ करो, आप की तरफ करो, आप बेटे हैं कि बेटे हैं, एक मामूली सा पर्दा आ गया तो पास रहते हुए भी आप दिखाई। तो मैं आपको सुंदरता भगवान ने दी, भगवान ने आपको सुंदरता दी, आपको कोठी दी, आपको विचार दिया, लेकिन एक कमजोर पर्दा बीच में आ गया, वही पर्दा हटाने आया हूं। बाकी सुंदर तो आप है, सुंदर तो आप है, मेरे हटने से आप सुंदर नहीं बने। अभी समय आप काले हैं गोरे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पर्दा हटाया तो सभी सुंदर है, कोई काला नहीं। एक बात है, बाकी पर्दे को सोच सकता था, पता नहीं लोग काले हैं कि गोरे हैं, करोड़पति हैं कि गरीब हैं, लेकिन जब पर्दा आता तो यही पर्दा आपके मन से हटाना चाहता हूं। और पर्दा हटते ही आप स्वयं लक्ष्मी हैं, स्वयं नारायण हैं, तो पर्दा में हटाना। बाकी ऐसा नहीं कि पर्दा हटते आप सुंदर हो गए कि लक्ष्मी बने, आप जो हैं वो कहीं कमजोरी का पर्दा लग गया विचारों का। अर्जुन कमजोर नहीं था, एक विचार का पर्दा है। और भगवान ने क्या कहा, आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं आपको अच्छा पड़ोसी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा भाई मिल जाए, अच्छा सलाहकार मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो कहते एक भी अगर अच्छा मिल जाए तो दूसरे भगवान को ढूंढने की कोई जरूरत जरूरत नहीं। जब भी आप हताश निराश हो गए, आप कमजोर बनोगे, अगर पड़ोसी अच्छा है तो दूर करेगा, आपके परिवार में कोई अच्छा है तो दूर करेगा, गुरु अच्छा है तो दूर करेगा, तो कमजोरी का पर्दा दूर करेगा। एक बात होगा, इसलिए आप स्वयं अच्छे हैं। मैंने कहा कोई भी अच्छा, ये मनोविज्ञान करता है, कोई भी एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए, गेटे करके हुआ है उसमें बहुत सुंदर लिखा है, आपके जीवन में एक अच्छा विचारवान मिल जाए, उसने गुरु नहीं कहा लेकिन गुरु का ये स्वरूप बताया कि आपके जीवन में अगर एक अच्छा विचारवान संस्कारवान मिल जाए तो बड़े प्यार से कहा भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हथड़ा आपकी मदद करेगा, आपको निकालेगा। एक विचार है, दिन में मैं आपको देख रहा हूं, रात्रि में चांद के प्रकाश में देख रहा हूं, अमावस की रात है, बरसात हो रही है, अमावस मतलब चांद नहीं है, बरसात हो रही है, इसको थोड़ा और फर्जू तक की बात समझ रहे हैं। दिन में प्रकाश से आप चल रहे हैं, रात्रि में चांद के मदद से प्रकाश में आप चल रहे हैं, चांद नहीं है तो तारों की मदद से आप चल रहे हैं। अब फिर आगे रात है, अमावस की रात है, पानी बदल रहा है, बादल घिरे हैं, इसे तारे नहीं दिखाई दे रहे, अमावस की रात है, चांद नहीं है, घनघोर बरसात हो रही है, तारा नहीं दिखाई पड़ रहा, फिर भी आप चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपका भगवान अंदर जिंदा है, इसलिए चल रहे हैं। आपका विचार जिंदा है, इसलिए चल रहे हैं। अभी कीजिए, जब सभी लोग साथ छोड़ दिए, समझ नहीं पा, मतलब सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारा नहीं है, जिसके सहारे चल रहे वो आप हो, तो सब कुछ रहते हुए आप अपने सहारे क्यों नहीं चल सकते? दूसरे के सहारे की क्या जरूरत? ये मनोवैज्ञानिक बात। सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, तारा भी नहीं है, फिर भी आप किसके सहारे चल रहे? आप अपने सहारे, अपने विचारों के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ। और फिर यही बता दो, इसी गेटे ने सिरका दिया, किसी के कहने से ये आपका विचार अच्छा निकल गया तो जैसे श्वास निकलते ही शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे किसी के कहने से अच्छा विचार निकलते किसी के कहने से अच्छा विचार निकलते ही आप इंसान से शैतान बन जाते। विचार ही आपको देवता बनाता है, विचार ही आपको शैतान बनाता है। अगर किसी के कहने से हमारे मन में दान देने की बात आई, हमारे मन में सेवा की बात आई, प्रणाम करने की बात आई, ये विचार देवताओं का है। और किसी के कहने से थप्पड़ मारने की बात आई, गला दबाने की बात आई, वो तो शैतान है, लेकिन मुझे भी शैतान बना दिया, विचारों से मुझे भी शैतान बना दिया। इसलिए हमारी बातों को बाहर वालों ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, आपकी कृपा से जरूरत है न, इसे बड़ा आनंद आता है हमारी बात। और बड़े प्यार से कहता हूं, जब कभी मुझे अंग्रेजी में लेक्चर देना पड़ा, जब कभी हुआ और वहां कुछ भी थे, हमारे पास में भी माता जी का मंदिर है, वहां भी विदेशों के सामने लेक्चर देना पड़ा था, बहुत पसंद है, लेकिन उनके सामने कर देता हूं। और बड़े प्यार से मैं आपसे कहता हूं, खुलेआम उनके सामने भी कर, अब बड़े प्यार से इसको खंडन न समझना, यह समझने की बात है। मैंने विदेशों से भी कहा, जब हमें पाउंड ऑफ डॉलर की जरूरत पड़ती है तो आपके देश में आते हैं, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार करने, शांति प्राप्ति के लिए आप आते हो, इससे बड़ी हमारी परिभाषा और क्या है? खंडन की बात नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन यहां क्यों आते हैं? हमारे पास वो चीज है, बड़े प्यार से कहता हूं, न कोई पाउंड से खरीद सकता है, न डॉलर से खरीद सकता है, लेकिन अपनी साधना से, अपनी साधना से मैं बड़े प्यार से कहता हूं कि आपको, आप करोड़पति हो गए तो सब घर में, सबके घर में आपकी तस्वीर नहीं होगी, लेकिन आप अच्छे विचारवान हो गए तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप फोटो कितने घरों में है। आप ले जाना चाहते हो अपनी फोटो तो अपने को तैयार करो। आज मंदिरों की बात, यहाँ की बात तो है, एक धर्म हमारे संतों में विदेशों में मंदिर बनाए और आज वो पागल हो गए, कहते क्या? आज मैं अपने बच्चे से कहूं कि चलो लक्ष्मीनारायण मंदिर, कहते कौन समय बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होगा कब, अभी तो खाने पीने को मन, और वहां चल के देखिए अब बच्चे मंदिर में जाना। एक ही शब्द आपसे कहूंगा, केवल जानकारी के लिए, हम जो भूल रहे हैं वो विदेशी अपना रहे हैं, और विदेशी जो भूल रहे हैं हम लोग अपना रहे हैं। एक बात है, क्योंकि सर परमात्मा घोषणा क्लब आप सब बात करता, अब हम अपना रहे हैं, और वो लोग जो है ढोलक और मृदंग पर हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहे हैं विचार। इसलिए अर्जुन कमजोर नहीं है, आप भी कमजोर नहीं है, अर्जुन तो प्रतीक है, लेकिन उसके माध्यम से हमें और आपको समझना है। जा विचार कर, बड़े प्यार से कहा, पहले बच्चों के लिए प्रणाम दिवा वैज्ञानिक बात, लेकिन थोड़ा सा आधार ले ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। अर्जुन ने युद्ध के समय प्रणाम किया पितामह को, गुरुद्रोणाचार्य को आशीर्वाद दिया, वत्स तुम्हारी विजय। दुर्योधन घबरा गया, घबरा के पूछता है आप लोग किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, तुम्हारी तरफ से दुर्योधन, तो आशीर्वाद सामने वाले अर्जुन को क्यों दिया। कहा जब कोई प्रणाम करता है तो आशीर्वाद दिया जाता है, तूने आज तक किसी को प्रणाम किया तो तुझे कोई आशीर्वाद दे। जा विचार करो, ये बात एक वैज्ञानिक ढंग से कर रहा हूं, आज पूरा विश्व मान रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता गुर्जर बड़ी को जब प्रणाम करते हो तो आप तो मेरे शिष्य हैं, मेरे पुत्र हैं, हृदय गदगद होगा। अरे अनजान आदमी भी बोलता है महाराज जी प्रणाम, तो उसे हम लोग अनजान को आशीर्वाद देते हैं तो आपको कैसे नहीं आशीर्वाद देते। तो आओ जो हमें प्रणाम करेगा उसे आशीर्वाद देंगे, तो आपको क्यों नहीं देंगे। जब विचार कर, अब वैज्ञानिक बात बताता, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह बैठे, पहले तो एक चीज बता दो, एक विदेशी ने मेरे से पूछा जैसे ही सब, कहे स्वामी जी आप लोगों को बड़ा अहंकार होता है, मेरी प्राइवेसी हाथ में है, ये लोग तो गलत का कुछ हम नहीं हो, आप लोग घर पे बैठे थे कहीं की बात है, मैं हिंदी में बताता हूँ, मैं डबल ट्रांसलेट है, बात को समझना भाषा की बात नहीं। वो अंग्रेजी में पूछता है कि आप लोग तो बड़े अहंकारी हो, क्यों देखो आप मुझे बैठो मुझे नीचे बैठा है। मैंने कहा नो साइंस, मैंने कहा तुम विज्ञान जानते हो, कहा जानता, साइंसम का क्या नियम है, वो कहता है एक्सक्यूज मी मुझे क्षमा करो, क्यों साइंसम नियम है कि हमें जिसे लेना है उसे ऊंचे रखना है तभी आपको मिलेगा, मेरे सुनके बैठ जाओगे तो मैं दूंगा लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। साइंसम का नियम है, विज्ञान का नियम है। अच्छा साइकिल नहीं समझे, नहीं समझे, आप अपना नल लगा दो ऊपर और टाकी नीचे रखो, कितना पानी आएगा। आप तब नल हो और मैं टाकी। अब आप छत पे चले जाओ और मुझे याद है वो साइकिल वाली बात नहीं समझ में आए, तो आप तब नल हो और समन किससे है, टाकी से, और मुझे यहाँ रखो और आप, इसलिए मुझे ऊपर रखना ही पड़ेगा तभी आपको पानी की जरूरत है। ये समझने की बात है, आप ऊपर बैठते हर चीज हमारे यहाँ जो है ना ये वैज्ञानिक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो खास करके प्यारे बच्चों को अब विज्ञान में बताता हमारे शरीर के बने कारण पूरा ब्रह्मांड आप में है। मैं बात कर लेता था, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जो कुछ ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में सूरज है ताप अंदर सूरज है, चांद है तो चांद है, वायु है तो वायु है, अग्नि है तो अग्नि है, जल है, सब कुछ है। यहां जितने बैठे हो पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे, यहां न राम का खंडन है न नारायण का खंडन, न कबीर का न गुरु का न सारे किसी खंडन नहीं, वो बात में बता। लेकिन पहले आप अपना जो विचार दे रहा हूं समझे, ऐसा नहीं कि इसमें ना हिंदू का ना मुसलमान कोई खंडन की बात ही नहीं। वैज्ञानिक बात खंडन का तो कोई सवाल ही नहीं, ये तो हम अधूरे होते इसलिए गड़बड़ होता है, पूरी बात को समझ नहीं पाते। एक आदमी मस्जिद पर शराब पी रहा, मौलवी साहब आए कहते मस्जिद पर शराब क्यों पीता, कहा कुरान में लिखा है, कहा लिखा लिखा था खाओ पियो कुछ भी करो, कहते आगे पर कहा पूरी कुरान कौन पढ़ता है, कटाई नहीं था, कहा आगे क्या लिखा, कहा वहां पर ही मैं नहीं करता, तो ऐसा लिखा है कि खाओ पियो कुछ भी करो माता पिता गुरु के खिलाफ जाओ, वरीयों को गालियां दो, अगर नरक में जाना है तो अगर नरक में जाना है वहां पर ये मैं तो यहाँ लिखा खाओ पियो बस मौत करो, बस खाओ पियो मौत करो यही पूरा हो जाता है, आगे मुझे पढ़ने की आगे पढ़ने की जरूरत बस वो लिखा हुआ है, लेकिन आगे क्या पूरा तो करो, पूरे आदमी तो बनो, जा विचार कर। पहले प्रणाम किया, तूने कभी प्रणाम किया चुप हो गया कौन आशीर्वाद देगा। और याद रखिए वहीं पर इशारा हो गया दुर्योधन का स्वभाव, मैंने कहा चेंज करना मुश्किल होता है, कुछ भी नहीं कर सके, ये पूरी वैज्ञानिक बात है। लेकिन उसके मन में इतना तो आ गया भले मेरे साथ लड़ते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद निष्फल नहीं जाएगा, अर्थात ये जीतेगा। मैं प्यारे बच्चों मैं कहता हूं हमने बहुत देखे माता पिता गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, समय लग सकता है। एक एक विदेशी ने पूछा था, मैं आपको बताता हूं ये बहुत कम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा आपकी कृपा से मनोवैज्ञानिक हूं। रामायण सब कोट के पास हरि अनंत हरि कथा में तो काफी आप लोगों से मिलता रहा, और मैं विद्यार्थी भी हूं और प्रोफेसर भी हूं, मतलब सीखता भी हूं और सिखा भी हूं, तो काफी मेरा परिचय। उसी परिचय में से खुलता रहता हूं ऐसा क्यों क्यों क्यों। एक विदेशी ने मेरे से जो पूछा और वो मैं आपको आशीर्वाद कर दिया, वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया फिर भी बर्बाद क्यों हुआ, मैंने कहा ठीक आप राजा दशरथ का प्रसंग कभी पढ़े हैं, राजा दशरथ ने मतलब पिता ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक नहीं अनेक बार कहा है, रोज प्रणाम करने जाते थे, एक नहीं अनेक बार कहा है गुरुदेव मेरा राम बहुत प्यारा है, आप ऐसा आशीर्वाद दें आशीर्वाद का, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि अयोध्या पे राज करते हुए जब तक सूरज चांद रहे लोगों के हृदय में भी राज करे। मैंने समझाया, वहां एक वो हिंदू बैठे थे, उनसे कहा दशरथ के पिता के नाम बताओ, उनके पिता के नाम बताओ, बता ही नहीं पाए, हिंदू नहीं बता पाए, दूसरा क्या बताए। जा विचार करो, गुरु के सामने पिता कहता है एक नहीं अनेक बार, मेरा नाम बहुत प्यारा है, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि अयोध्या पर राज करे, लेकिन जब तक सूरज चांद है लोगों के हृदय पर राज करे, तो ये हृदय पर राज करने की ही व्यवस्था है जो बर्बाद हुआ है। स्वामी जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, अगर वो सीधे बन जाते तो कौन जानता, जानता कौन। और फिर आशीर्वाद कैसे बैठ गया, हेदर पर राज करके फिर वो गति पर बैठे, तो आशीर्वाद काम करते। और यही मैंने कहा हरिमंदन कथा न राम से पूछा गया, तो राम ने बड़ी सुंदर बात कही है आशीर्वाद के, कि विकट से विकट परिस्थिति में एक गुरुदेव का आशीर्वाद है कि न मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और न सीता की भ्रष्ट हुई, और बुद्धि नहीं भ्रष्ट हुई तो अयोध्या से आ गई। तो माता पिता गुरु के आशीर्वाद से विगत परिस्थिति में आपकी बुद्धि नहीं भ्रष्ट होगी, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन बुद्धि ठीक रहेगी, आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ फिर आ जाएगा, इसलिए जाने की चिंता मत करो, जाए सब कुछ फिर आ जाएगा। जो हमें जानता है वो नहीं जानते, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा, आज रशियन वैज्ञानिक भी बहुत प्यार से आदर से एक एक शब्द पर विचार कर रहे, और हम लोग बिना विचार बोल देते, पूरा विज्ञान है। जब आप किस माता पिता गुरु को प्रणाम किसी को भी कीजिए, लेकिन माता पिता गुरु बहुत खुश होते हैं। अब देखिए हमारे हृदय में फाइनल नाम की लाइन है, ग्रंथि है, तो जब आप प्रणाम करते हैं तो मेरे अंदर प्रसन्नता आती है, मेरे अंदर जब प्रसन्नता आती है तो ग्रंथि 100 गुना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बिजली शक्ति। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप उसका पोषक बनाते, हीटर है, पंखा चल रहा है, ये है, तो उसी तरह से जब मैं आप आशीर्वाद दूंगा तो वो शक्ति वो करंट आप में आएगी, और आशीर्वाद जो दे रहा कि आप आगे बढ़े आगे चले, एक है। अब इसका मनोवैज्ञानिक रूप बता, हमने कहा आयुष्मान भाव, तो थायमस नाम के ग्रंथि आपको उर्ध्वगामी बनाती है, इसलिए माता पिता गुरु का हाथ सिर पर चाहिए, उनके पैर में प्रणाम करते हैं, आंख में हाथ में नाभि में और पांव में, आज बड़ी उम्र होने के नाते दो व्यवस्था ठीक है, गुरु का हाथ आपके सिर पर चाहिए और आपका सिर गुरु के चरणों में चाहिए, ये व्यवस्था है शक्ति नहीं। लेकिन जब आपने प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर के शक्ति तो मिल गई, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग ना हो, हमने कहा आयुष्मान भाव, जब आयुष्मान भाव मैंने कहा तो पहले तो मनोवैज्ञानिक रूप लीजिए, यहां जितने बैठे हो सब के लेकर एक मिनट का समय देता हूं, आप बैठे ही बैठे हाथ जोड़ करके अपनी माँ को याद करो, गुरु को याद करो, पिता को याद करो, भगवान को याद करो, इनको याद करके आप नमस्कार मन में करें, माता को, पिता को, गुरु को, जो भी आता है उसे सर झुका कैसे नमस्कार करें। तो आप देखेंगे कि माता, पिता, गुरु या मंदिर जब से झुका कैसे नमस्कार करते, तो जितनी देर तक नमस्कार करते श्वास रुकी है और रोज आना इतना आप करोगे तो भगवान ने जितनी सांस दी जितनी बार प्रणाम करो तो रुकेगी, इसलिए उम्र बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। ये विज्ञान कहता है इनका प्रणाम भी वैज्ञानिक है और हाथ जोड़ के कल प्रणाम करते हो, इसका एक मेडिकल ग्राफ है। प्रियात्मन हम किससे किससे पूछे कि तुम्हें चमड़े का रोग है, किसी डिजीज है, कैसे? इसे कहते हैं वैज्ञानिक लोग, भारत के ऋषि मुनि बहुत ही वैज्ञानिक है। हाथ मिलाऊंगा तो इन्फेक्शन है, उसका रोग मुझे लग सकता है, लेकिन हाथ जोड़ के करूंगा तो उसका रोग भी नहीं लगेगा और आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं भारत वाले हाथ जोड़कर प्रणाम कर। मान लो किसी को कुछ हो तो हाथ मिलाओगे तो इन्फेक्शन, लेकिन हम इन्फेक्शन की बात नहीं की, हमने कहा तो हमारी हर चीज जो है ऐसा। अब जब माता पिता गुरु को प्रणाम करें, जीवन में बिगड़ परिस्थिति आ सकती है, खुद राम के सामने भी आई, अर्जुन के सामने भी आई, लेकिन बिकट से बिकट परिस्थिति में राम पर भी गुरु की कृपा। अब दोनों बातों को मिलाना चाहूंगा जो व्यवहारिक है। राम ने गुरु का आशीर्वाद साथ में रखा, राम ने गुरु का आशीर्वाद साथ में रखा और चले, और अर्जुन गुरु को, जगत गुरु को साथ में रखा। राम ने गुरु का आशीर्वाद, गुरु का स्मरण, गुरु को साथ में रखा, बच्चे जी को साथ में, और अर्जुन गुरु को, कृष्ण को साथ में रखा। अब याद देखिए एक बड़ा विचार, राम कर्तव्य पालन में चले तो जब तकलीफ आई, परिस्थिति खराब बनी, इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से देखिए, ऐसा वैसा करते नहीं। जो आपको वैज्ञानिक लोग बताना चाहते हैं, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उससे सीखो, सीखने की बात करते हैं, पहले तो नहीं कुछ मानते, तो मैं सीखने की बात करता, ऐसा क्यों हुआ है छोड़िए। राम कर्तव्य पालन में चले, तकलीफें आई, कठिनाइयां आई, और रोड आया, विरोध आया, संकुल आया, तो ऐसे समय में राम की मदद कभी हनुमान ने किया, कभी अंगद ने किया, कभी नंदलील ने किया, कभी बानर भालुओं ने किया, ये सब मदद किए। अब देखिए मनोवैज्ञ कितना आज हमारा विचार बाहर वाले पढ़ रहे हैं और हमें पता रहे। राम गुरु का आशीर्वाद लेकर कर्तव्य पालन में चले, कठिनाइयां आई, अवरोध आया, विरोध आया, प्रतिकूलता आई, तो कभी हनुमान ने मदद की, कभी अंगद ने, कभी मंदिर ने, कभी बाद में भाग। अब क्या किस की बात ले लीजिए, किसकी शरण में अर्जुन है, पांडव है? राम की कठिनाइयों में, प्रतिकूलता में, मैं पहले अपने हिसाब से कहूं फिर वैज्ञानिक बात करूं, राम की परिस्थिति जब विकट आई, प्रतिकूलता आई, तो राम के भक्तों ने दौड़ किया, राम के सामने जब तक कुंता आई और आया वैज्ञानिक बात बात न बताओ। हमारी दृष्टि से राम के भक्तों ने राम की कठिनाइयों को दूर किया और कृष्णा अवतार में भक्तों पर अर्जुन पर कठिनाई आई तो भगवान ने दूर किया। भगवान धरती पर छोटी पत्थर उठाए। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि रामायण के बाद राम के बाद जिसकी जरूरत क्यों हो गई। रामायण तो पूर्ण है लेकिन राम के बाद जिसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कहा हमारे वहां अरे मेरे प्यारे हिंदुओं, आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, आपको व्यवहार में राम के दोनों को रखना है। राम का स्वरूप, भगवान का स्वरूप माता पिता और गुरु है। अब मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं हम लोग लायक बने तो माता पिता गुरु, कभी कठिनाई में आ जाए, परिस्थिति आ जाए तो शिष्य और पुत्र का धर्म है कि उनकी उनकी जो कठिनाइयां हैं विपत्तियां हैं आप दूर करें। माता पिता गुरु पर अगर कोई प्रतिकूलता आ जाए तो भक्तों को जैसे मेरा शिष्य मेरी तकलीफ दूर करें, आपका बेटा आपका करे, तो अगर माता पिता गुरु पर व्यवहारिक तकलीफ आ जाए तो शिष्य पुत्र का धर्म है कि अपने भगवान माता पिता गुरु की मदद करे कठिनाइयों में से निकाले। और गुरु का धर्म है कि जब हमारा शिष्य हमारा बेटा तकलीफ में आ जाए तो उसकी कठिनाइयों को तो मेरी कठिनाइयों को माता पिता गुरु की कठिनाइयां आप दूर कीजिए और आपको तकलीफ आएगी तो माता पिता गुरु हम दूर करेंगे। इसलिए दोनों बातों को साथ में रखना, तब हम पूर्ण बनेंगे, नहीं तो साथी बनने क्या जरूरत थी, पत्थर उठाने क्या जरूरत थी। इसे मेरे प्यारे बच्चों आप लायक बने हैं, कलेक्टर है, डॉक्टर, इंजीनियर, तो माता पिता गुरु के सामने कोई व्यवहारिक बात आ जाए उसमें सजा कर। और ये भी कहता मेरे शिष्यों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे भारत के नागरिकों पर अगर किसी तरह व्यवहारिक तकलीफ है तो राजा को भी, आज जो प्रधानमंत्री है राजा को भी माता पिता गुरु माना गया, जो प्रजा की कठिनाइयों को दूर कर सके उसी को प्रधानमंत्री बनना है, नहीं तो नहीं बनना। ये हमारी अपनी नीति, किसी के खिलाफ नहीं। अगर आपकी तकलीफ को दूर कर सको तभी आपको दूर, रोटी खाने के लिए नहीं खाया और जुड़ा चल दिया, पूछा भी नहीं केला खा गया, ये कर्तव्य की बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पुत्र हो के पुत्री, लेकिन माता पिता गुरु का स्मरण करो, उनका आशीर्वाद लेकर चलोगे तो ईश्वर की व्यवस्था में जब आपके सामने विकट परिस्थिति आएगी, मान लो माता पिता गुरु नहीं है, उनका आशीर्वाद तो आपके साथ है, उनके आशीर्वाद से विकट परिस्थिति में कोई न कोई हनुमान की तरह, अंगद की तरह आकर आपकी मदद करेगा। लेकिन साक्षात माता पिता गुरु अगर आपके साथ हैं तो आपकी कठिनाई दूर करेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन। कम से कम जो मेरे शिष्य हैं, कितनी बार कहा आपने, हम लोग कहीं आते जाते नहीं, अभी तो देख रहे हो, लेकिन नहीं भी रहूंगा तब भी आपके साथ हूं। अगर कृष्ण भी आज साथ में है, मैं इतनी बात नहीं बताना चाहता, कुछ को अनुभव है क्योंकि जीते जी बताने में अच्छा नहीं करता, लेकिन मैं खुद आपको बताऊं, मैं तो टोटल हूं, एक प्रिंसिपल है कहीं, कहो फिर बाद में ध्यान बता दो। बड़ी कठिनाई में आ गए, मेरे से पूछा स्वामी जी रास्ता क्या। मैंने कहा देखो मैं टोटल मानता हूं, बड़े प्यार से पूछता हूं कि बचपन से आपकी श्रद्धा किसमें है। मुझे मनीषानंद को डोटता ही रुक, मुझे कुछ कहने की कोशिश न करो, मैं टोटल हूं, मैं खुद सबको मानता हूं। आप बचपन से किसमें श्रद्धा रखते हैं? कहते साईं बाबा, साईं बाबा की फोटो घर में कहते हैं। अब साईं बाबा के पास जाकर बोलो कि मनीषानंद के कहने से प्रणाम कर रहा हूं और आपका इनाम जय साईनाथ, जय साईनाथ कह रहा हूं और आपकी कठिनाई नहीं दूर हो तो मेरे पास वापस आ जाए। अब बताना कि नकारात्मक बोलने वाले बहुत होते हैं। वो गए घर में साईं बाबा का चित्र है बैठ गए और कहा भी कि मनीषानंद स्वामी कहने से फिर से आपके चरणों बैठकर जय साईनाथ बोल रहा हूं। कोई नकारात्मक उस समय आदमी आ गया, कहता क्या जय साईनाथ, जय साईनाथ बोलता है ये क्या रखा है फोटो में, क्या रखा है मनीषानंद में, तो मनीषानंद का उसने कुछ ऐसे शब्दों को उपयोग किया क्योंकि कभी कथा में सुना था अपने गुरु का अपने ईद का कोई अपमान करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो नहीं उठ के चले जाओ। कभी प्यारे बच्चों माता पिता गुरु का सारी दुनिया अपमान करे सुनना भी पाप है इसलिए उठ के चले जाओ, सुनने की जरूरत नहीं, कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं। और एक नकारात्मक व्यक्ति आया, क्या मनीषानंद क्या किया, तो बेचारा थोड़ा था अच्छा था और थोड़ी कठिनाई आ गई थे तो उन्होंने बल्कि मन में खराब विचार आ गया तो सब्जी काटने का चाकू था और पढ़े लिखे थे वो सब मैं नहीं बताऊंगा, डॉक्टर लोग हमारे अंदर एक ऐसी नस होती है कि पढ़ा लिखा चाहते उसे काट दीजिए तो, लेकिन वो नहीं बता सकता तो बड़ा मुश्किल हो जाए, मैं जानता हूँ और उसी नस पर चोट दे दूँ मैं तो दावत को मैं अभी जीत नीचे बैठा कोई कराटे वाला आए नहीं था अभी एक मिनट पर देखूंगा डॉक्टर साहब एक नस ऐसी होती है, भगवान ने सबको ताकत दी है ज्ञान हो जाए तो डॉक्टर लेकिन नहीं बता पाया, नहीं तो पहले तो हमारी बेटियां सांस से डरना शुरू कर तो उसको ज्ञान था, वो चाकू लेकर मैं काटने लगा चाकू गायब हो गया। फिर क्षणिक ये क्या कर रहा था क्या हुआ मेरे पास था, मैंने कहा चाकू गायब कैसे हो तुम्हारे हाथ में था, मैंने कहा साईं बाबा के चित्र के पीछे है जाकर पाया तब उसकी श्रद्धा हो गई सारी घटनाएं। तो साईं बाबा का चमत्कार मैंने तो देखा है लेकिन मैंने जिसको इसलिए मेरे पास कोई आता पहले पूछा किसको मानते हो साईं बाबा, साईं बाबा कभी ला मैं कभी नहीं कहता मुझे मान जरा नाम तो जरा पीर तो पीर फटे, अरे आप जिसे मानते हो उसको मानो मैं रास्ता बताऊंगा उसमें मनीषानंद बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि मनीषानंद साईं बाबा को मानते हैं जरा नाम को मानते हैं। और आज अपने परिवार में कह रहा हूं अगर मनीषानंद को देखना है तो हर रूप में देख सकते हो, आप ही श्रद्धा चाहिए हर रूप में देख सकते हो श्रद्धा चाहिए। हमें टोटल मैं किसी का विरोधी नहीं, विरोधी कैसे हो सकता, लेकिन आपकी जो क्षमता है उसे तोड़ना भी साईं बाबा को साईं मैं ही साईं बाबा तोड़ने कैसे हो जला राम को चला मैं ही चला रहा हूं शिव तो मैं ही शिव हूं फिर तोड़ने की क्या जरूरत है, तोड़ा तो मैं अपने को तोड़ रहा हूं आपको नहीं तोड़ रहा, इसलिए जो भी रखो और एक देख लेना मेरे प्रियात्मन भले मनीषानंद को मानो लेकिन बचपन से जो संस्कार है उसी में मनीषानंद को देखो और जब आप याद करोगे तो मैं साईं बाबा जलाराम जहां जिस लोक में है उनसे संपर्क करके आपका काम बना दूंगा। लेकिन ये कोई कहे कि साईं बाबा को छोड़कर इधर आओ, उस जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं। अज्ञानी कोई नहीं, उसको छोड़ो और मुझे पकड़ो, ऐसा कभी नहीं कोई कहे तो मानना भी नहीं। सब वही है, सब अपनी जगह ठीक है। या विचार सूरज को देखने के लिए कोई नौसारी जरूरी स्वामी जी नौसारी आइए मैं सूरज दिखा दूंगा। मैंने कहा मैं जहां हूं वहीं से देख रहा हूं, बोल क्या चाहिए। नहीं नौसारी आइए तब मेरे पास आइए तब भगवान दिखा। एक कैसी अज्ञानता बढ़ गई, कुछ बात समझ में नहीं आती। जब हमारा कृष्ण विराट रूप दिखाया और विराट रूप में बता दिया कि पूरा जगत मेरे अंदर है, तो अगर विराट है बुरा माने, अगर विराट में पूरा जगत दिखाया तो जगत में हम आए हैं, तो हम आप भी विराट में जैसे कृष्ण के मुख में पूरा जगत दिखाई पड़ा, ऐसे भगवान के विराट में हम सब हैं, उनसे अलग नहीं है। अच्छा अलग है ही है, हम उसमें फिर किसको अलग कर रहे हैं। एक बड़ी सुंदर बात आपको बताऊंगा वैज्ञानिक गीता सुगीता के बाद जो कर केवल नहीं पास कर लेते रहे, इसी पर सब कुछ बता दूंगा। आप मुझे बताइए वैज्ञानिकों ने प्रश्न किया, मैं देता हूं बताता हूं, लेकिन मुझे आप बताइए हमारे ऋषियों हमारे ब्राह्मणों ने पूजा के समय हमारे ब्राह्मण हमारे कथाकार हमारे संत कहते हैं जहां जहां देखो परमात्मा है कृष्ण है, जहां विचार करो इसी को वैज्ञानिक ढंग पर लो। आप बोल को देते हमारे मौलवी साहब भी बोल देते लाले लाई ले ला सभी जगह अल्लाह, हम कहते हैं सभी जगह परमात्मा, फिर आप विरोध किसका करते हो। जहां विचार करो मेरे प्रिय आत्मन, ये वैज्ञानिक ढंग से आपको बताऊंगा ताकि कभी मन में शंका आए। भगवान को बनाना नहीं है, क्रिएट बनाना नहीं है, जब हमारे ऋषियों ने कह दिया एकम सत विपला बौद्धा बदलते इस पर ध्यान क्यों नहीं गया, इस पर विचार क्यों नहीं किया। आप भगवान बना नहीं सकते, वो तो है, कहां जाऊं शांति मिले, किस भगवान के पास जाऊं, किस मंदिर में जाऊं। मेरे प्रिय आत्मन सत अस्तित्व भगवान सब में है, मेरे क्रियात्मन मिट्टी में से आपने घोड़ा बनाया, मिट्टी में से आपने हाथी बनाया, मिट्टी ने एक आकार लिया, आकार से घोड़ा बना, मिट्टी ने एक आकार लिया, आकार से हाथी बना, लेकिन है तो पूरी, चाहे घोड़े को देखें चाहे हाथी को देखें, लेकिन है तो पूरी मिट्टी की मिट्टी। आपकी बात कर लो, आपकी बेटी कहती है माँ पिता के, मुझे सोने के दाने बना दो। सोना एक शून्य है, सब है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन आपने सुना बुला के सोने का आकार दिया। ये अरिंग है, ये नेकलेस है, ये बन गई। अब देखिए एक आकार से आप नाम दे रहे हैं, ये पगड़ी है, ये नेकलेस है, ये इयररिंग है, नाम दिया, लेकिन है तो पूरी सोना की सोना नाम है। एक पद में से हम आप प्रकट हुए, नाम है शकीलदास मणिकानंद आप बेटा बेटी, लेकिन उसी जिस पद से आकार राम ने लिया, किसने लिया, शिव ने लिया, वही शक्ति प्रकट हो जाए तो चाहे वो खरीदार हो कि मनीषा मंदिर आप हो, उस शक्ति प्रकट होते ही पूरा का पूरा स्वरूप वही है, याद रखिएगा। इसलिए आप भी वही हैं, लेकिन आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। न भक्ति का खंडन है, न किसी मूर्ति का खंडन, खंडन की बात नहीं। आप नारायण के सामने बैठिए, नारायण कहते कहते आप चंद्र नारायण आप स्वयं हो जाएंगे, राधे राधे कहते आप भी स्वयं हो जाएंगे। वृंदावन में सखी संप्रदाय है और मैं साक्षी हूं, किसी ने कह दिया कि आप लोग सखी प्रथा के हो, तो हाथ में नाली का गुण है, मनीषानंद साक्षी है। एक सखा और एक सखी, सखा से कमल पुरुष से कहा गया तुम अपने अंदर अपने धर्म का तुम पुरुष है उसका परिचय दो, नहीं दे सका। सखी नारी वृंदावन सखी समुदाय पुरुष, पुरुष सखी बना सखी समुदाय है, अभी पहले ज्यादा सभी कम है, तो संभाषण की बात है। पुरुष सखी बना हुआ है और किसी को अपना पति मानता है, कम से कम मेरे विश्वास पर आप विश्वास करना। उसने कहा कि अगर किसको किसके प्रति मैं पूर्ण समर्पित हूं और मैं सखी हूं तो मेरे पूरे शरीर का परिवर्तन नारी के रूप में हो जाए। और मनीषानंद ने भी देखा कि वो सखा वो नर जो सखी संप्रदाय का था पूरा का पूरा नारी
जी गुरुदेव रघुनाथ हरे रघुनाथ हरे।
आप बताइए तो सर, गजानंद महाराज जी का इतिहास सुना है, किसी ने कुछ कहा गणपति उपासक थे और कई लोगों ने जब कहा थे एकदम उनका पूरा स्वरूप पूरा गणपति जैसा तो अच्छे का हुआ। ऐसे रामकृष्ण का सबका है, इसलिए असंभव नहीं है, इसलिए किसी मूर्ति का खंडन नहीं है। लेकिन जो समझाना बताना चाहता उसे धरती पर अवतार में राम आए और कृष्ण आए, उन्हें भी कर्तव्य का पालन करना, तो हमें आपको क्यों नहीं करना पड़ेगा? हम आप कर्तव्य से क्यों भागते? आप कर्तव्य भगवान करें, अरे स्वयं आप भगवान के रूप हैं। आप अपना काम अगर स्वयं नहीं कर सकते तो कौन आत्मा सूत्र कर एक मनोवैज्ञानिक कहानी है पुरानी। एक किसान बैलगाड़ी से जा रहा है, बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, सिर पर हाथ रख के बैठ गया। कहानी भगवान आए, कहते क्या बात है किसान? कहा मैं तो कृष्ण को बहुत मानता हूं, मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया, भगवान आके ठीक करे। भगवान कहते 7 साल के बालक में रूप है, आप ठीक कर सकते हो? नहीं। कहा ठीक कर सकता, तो जो आप ठीक कर सकते हो उसके लिए भगवान को तकलीफ क्यों दे? ठीक करो, जो काम आप कर सकते हैं, आपके घर पर मैं आया, आप तो हे बोलते हो, आप तो भगवान है, आप संकल्प करो चाहे आ जाए चाहे मैं न बना, तो मैं तो चाय बना के रस्ते पी लेता, आपको क्यों कहा कि चाय करो? आप क्यों नहीं आता? इसलिए कर्तव्य करने की जो बात है भगवान की मदद से करना पड़ेगा। भगवान आप स्वयं हैं, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा, मदद वो करेगा, लेकिन करना ये निमित्त दिखाने के बावजूद भी भगवान ने कहा ये अर्जुन तो निमित्त है। हम लोग निमित्त वाली बात बोल रहे भगवान कर, इसलिए आपके करता चाहे बच्चे की पढ़ाने की बात हो, बेटी की शादी की बात हो, मकान बनाने की बात हो, संस्था बनाए, आप केवल निमित्त बनेंगे और उसको जितना कराना आपसे करा के रहेगा। लेकिन मोहन भाई शरीरदास जी आपका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन निमित्त कब कहाँ बनेगा उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
सदगुरुदेव की जय।
वो कोई ना कोई निमित्त बने, अब किस समय कहाँ कौन निमित्त बनेगा वो अभी देखना है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अच्छा काम करते समय अगर समय भी लंबा हो जाए तो धीरज को मत खोना, और इसी बात को साईं बाबा ने हर जगह कहा है श्रद्धा और समय। जो भी काम कर रहे हो श्रद्धा रखो कि भगवान कोई कोई चीज निमित्त बनाएगा, और धीरज इतना रखो कि भले देरी हो रही है लेकिन मेरा काम होगा होगा, लेकिन ये काम भगवान के आदेश से होगा। हम आप प्रार्थना कर सकते हैं, मैं अपनी माँ से प्रार्थना कर सकता हूँ कि माँ मुझे कलंकर बना दे, लेकिन माँ पहले पढ़ाएगी लिखाएगी थप्पड़ मारेगी मास्टर लाएगी, 3 दिन में माँ के आशीर्वाद से मैं कलंकर बनने वाला हूँ। जा विचार कर, माँ बनाएगी लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, माँ नहीं पढ़ने जाएगी, माँ परीक्षा देने नहीं जाएगी, ये सावधानी आपको रखनी है। क्योंकि मैंने विज्ञान में ही पढ़ा कि हमारा विचार जो न्यायशास्त्र न्यायशास्त्र में क्या कहा है, जो संस्कृत पढ़े हमारे बहन भाई है सब संस्कृत के प्रकार के द्वारा है, न्यायशास्त्र कहता है शब्द का विनाश नहीं है, विचार का विनाश नहीं है। तो विज्ञान भी मानता है कि आज जो मेरे द्वारा अच्छे शब्दों का प्रार्थना के द्वारा नम्रता से किसी भी तरह हमारे आप अंदर जो अच्छे विचार निकले हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे और समय पर उनका फल आपको दिखाई, एक दिन में नहीं। इसे थोड़ा मोहन भाई ने कहा, श्री कबीरदास ने समर्थन किया, दोनों की बातों का समर्थन करते हुए मैं कह रहा ये काम होगा लेकिन थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी श्रद्धा रखना और थोड़ा धीरज, घबरा नहीं जाना चाहे कुछ भी हो जाए। वैज्ञानिकों की एक बात बताते हैं, वैज्ञानिकों की मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक छोटी बात है, आज से करीब 7 साल पहले निकाला गया कि मैटर करना पिटवाई, लेकिन 2-3-4 साल में फिर 40 साल के बाद एक साइंटिस्ट निकाला है कैंडी डिवाइडर से वैज्ञानिकों का। अब वैज्ञानिकों की बात बताता हूं, वैज्ञानिकों ने सोचा भाई 7 साल पहले एक वैज्ञानिक कर के चला गया, 40 साल तक विषय पर कोई पूछ नहीं, फिर हुई। अब वैज्ञानिक मानने में मैं मोहन भाई आपसे भी अपने से भी कहता हूं, एक बार जो संकल्प उठा है इसको अशुभ मत लेना। अगर इस समय का वर्तमान का कार्यकाल पूरा हो गया है तो हम जाएंगे, लेकिन 20-30-40 साल बाद वापस आके वही काम हम फिर पूरा करेंगे, अपना ही काम। न्याय ने कहा दिया तुम्हारे पर व्यर्थ नहीं जाएगा। आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, इसके बाद क्यों इतने दिन तक क्यों नहीं दे सके, उसके बाद क्यों हुई, अब आपको बताता हूं। वैज्ञानिकों के बाद मनोवैज्ञानिक ढंग से आज आप गीता पर प्रवचन कर रहे हो, मैंने 16 अध्याय तक आप पर समस्त गीता का प्रवचन किया और आपने कहा महाराज जी 2 अध्याय बाकी है। मैंने कहा पुत्र कल करूंगा। एक बेटा आप अपनी कोठी में गए, आप सो गए, 16 अध्याय बोल रहे। मैं अपने आश्रम में गया, जानता पूरा 18 अध्याय, आप 16 तक जानते हैं, लेकिन आपसे वादा किया कि अगले संडे फिर आएंगे। तो इस संडे आकर 16 अध्याय तक बताया। मैं आश्रम वापस गया, अगले संडे आया। अब असुर न मानिया ऋषु भी समझिए, आज 16 अध्याय आपके समक्ष वर्णन किया। मैं वापस गया, अगले संडे आप वापस आए। अब अशुभ न समझना, वापस गया भगवान के पास, आप भी वापस गए भगवान के पास। लेकिन जब फिर पैदा हुए तो मैं 2 ही अध्याय सुनाऊंगा, 18 अध्याय नहीं सुनाऊंगा, और 2 ही अध्याय में आपका काम
पूरा।
तो ये संडे वाला जो अध्याय है अगले संडे पूरा होगा। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं संगा जाति छोटी उम्र में, संत ज्ञानेश्वर छोटी उम्र कहते ये जो छोटी उम्र लेकर आए ये पिछले जन्म में बहुत किए, इतना ही बाकी था करके। तो आज आपको 8 घंटे में गीता सुनाऊंगा और अगले संडे 3 घंटे में सुना के वापस। इसे पूर्वजन को मान रहे हैं कि भाई कुल, इसलिए हमारा काम हमें ही पूरा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसलिए इसको अशुभ न मानिए, आपका जो संकल्प है शुभ है वो होगा। अब इसी तरह से रोज सोने से पहले याद स्मरण कर, आज मेरे द्वारा किसी का हित तो नहीं हुआ, कोई अहंकार में तो नहीं आए, कोई ये तो नहीं आए, और जो चीज आपको कमजोर बनाती है उसका स्मरण करो कि कल से नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तो मनोविज्ञान कहता है आदमी सोने से पहले अपनी कमजोरियों को याद करे और सोचे कल से कम से कम एक कमजोरी दूर करूंगा तो 6 महीने में भगवान हो जाए, भगवान हो जाए। पहला ये जोर सोते समय पहले विचार करो, आज मैं किसी की निंदा तो नहीं सुना, अगर सुने हैं तो कल से नहीं सुनूंगा, फिर गुरुवार नहीं सुनू, कहते रहे किसी गलत देखा तो नहीं, किसी गलत बोला तो नहीं, कोई गलत जगह तो नहीं गया। अब अपनी परिभाषा आ जाएगी, सुन करके नहीं सुनना, देख करके नहीं देखना, बोल करके नहीं बोलना, चल के नहीं चलना। आपने परमात्मा की परिभाषा करते हुए कथा वाक्यों से क्या सुना, वो सुन करके नहीं सुनता, देख करके नहीं देखता, बोल करके नहीं बोलता, चल करके नहीं चलता। अब आ जाइए मनोविज्ञान पर, जो सुनने लायक है सुनो नहीं कान बंद करो, जो देखने लायक है देखो नहीं तो आंख बंद कर लो, जो बोलने लायक बोलो नहीं मुंह बंद कर लो, अच्छी जगह जाना चलो नहीं बैठ जाओ। ये रोज अभ्यास करो, आज मैं किसी की निंदा तो नहीं सुना, गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं बोला, कोई अहंकार तो नहीं आया, बदले की भावना तो नहीं आई, गलत जगह तो नहीं। रोज अभ्यास करो और 6 महीने में आप स्वयं जो सोचते हैं जिसका नाम लेते हो उस शक्ति प्रकट हो जाएगी। बिना प्राणायाम किए, बिना गुफा में गए, सब कुछ विवेकानंद की किस गुफा में गए, पिछली तैयारी थी, गुरु के पास आए सब कुछ हो गया। जैसे 16 अध्याय सुनो तो 2 अध्याय में सब कुछ हो जाएगा। तो गीता सुगीता जो मैंने लिया केवल आप सबके समक्ष डॉक्टर से जो विचार करके लिया, मेरे प्रिय आत्मन इसीलिए लिया कि आप जन्म से कमजोर नहीं है और जहां से आए हैं वहां से भी कमजोर नहीं है। जिस परमात्मा ने हमें आपको इस धरती पर भेजा वो परमात्मा भी विशाल है, विराट है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति लेकर हम आए। लेकिन हमारे अंदर जो विचार शक्ति है पर्यावरण के कारण, आस पास लोग सुनने के कारण हम आंख से कमजोर नहीं बने, शरीर से कमजोर नहीं बने, लेकिन विचार से कमजोर हो गए। और विचार एक ऐसा पर्दा है जिस पर्दे को द्वारा साधना के द्वारा चाहे भक्ति हो चाहे योग हो चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हर रास्ते ठीक है हर मंदिर ठीक है उसी कमजोरी के पर्दे को शीशे के सामने मिलान अद्वैत शीशे के सामने पर्दा है उस पर्दे को हटाते ही शीशे में आप अपने को देखते हैं जैसे पर्दा हटाते ही शीशे में आप अपने को देखते हैं ऐसे विचार का पर्दा हटते ही जब आप निर्विचार में जाते हैं जब आप विचार से ऊपर चले जाते हैं आज के वैज्ञान पुरुष का साइंस ज्ञान पंच संसद ज्ञान तंत्र ये जो कुछ है इसके ऊपर चले जाते हैं तो वहां चाहे राम को मानो चाहे किसको मानो चाहे गुरु को मानो आप उसमें सप्लीमेंट एक रूप हो जाते हो वहां पता ही नहीं चलता कौन गुरु है कौन शिष्य है कौन राजा है कौन रंग है और फिर पता चलता है कि विराट शक्ति हमारे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं लेकिन इस अवस्था की प्राप्ति के बाद जब आप व्यवहार में आते हैं तो जबरदस्त ताकत लेके आते हैं वो ताकत ईश्वर की कृपा से ईश्वर की प्रेरणा से आपको डॉक्टर बनाएगी इंजीनियर हो जाओगे मंत्री हो जाओगे एक अच्छे महात्मा हो जाओगे अच्छे माता पिता हो कुछ उसके ऊपर है चाहे आप तानाई बजाते हैं या खेती का काम करते हैं चाहे आप एक संत हैं कि भगत हैं लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां हम हैं लेकिन वहां पर हमें अपना ही है यह तो वातावरण से अपना संबंध है साइंस ज्ञान का संस्कृत ज्ञान तत्व सब कुछ है लेकिन आप उसके परे हैं और वहां से जब वापस आएंगे तो ईश्वर आपके द्वारा जो कराना चाहता है आपको जबरदस्त सफल डॉक्टर बनाएगा इंजीनियर एक मंत्री एक अच्छा साधु वक्ता लेखक एक संगीतकार ये उसकी इच्छा पर और उसकी इच्छा पर समर्पित होकर के आप अपने जब कर्तव्य का पालन करेंगे चाहे संगीतकार है कि कलाकार है कि अच्छा प्रवचन करते हैं अच्छे लेखक हैं डॉक्टर वो आपके करा कर देगा और याद रखिएगा वो चाहता है उसको याद करो आप लायक हैं और लायक बनने के बाद भी भाग विचार करता लायक बनने के बाद भी अगर भागोगे तो हमारा परमात्मा हमारा गुरु लायक बनने के बाद कोई क्षण ऐसा आया कि आप पलायनवादी बनोगे तो जैसे कृष्ण ने एक क्षण पलायनवाद का विचार आया अर्जुन को लेकिन भागने नहीं दिया आप सब लायक बन जाइए आपका गुरु आपका परमात्मा कोई क्षण ऐसा आ सकता है कि आप भागने की कोशिश करोगे लेकिन आपका गुरु आपका परमात्मा आपको भागने नहीं देगा वो आपसे काम लेकर वो आपसे काम लेकर रहेगा अच्छा चीज बता दो किसी को थोड़ा व्यवहारिक सभी मेरे आपके घर पर पांच साधु लेकर आए पांच भगत लेकर आए मुझे मालूम नहीं था इसको कल्पना है मुझे मालूम नहीं था कि हमारी बेटी आज रसोई नहीं बना सकती आप तो एक कल्पना कर और आपका मेरे लिए भाव है आपका मेरे लिए भाव है तो आप कुछ चाय बनाओगे याद रखिएगा जब गुरु आया चार पांच भगत साधु लेकर आया ऐसी एक स्थिति थी कि मेरी बेटी चार पांच दिन भोजन नहीं बना सकती लेकिन आपने बनाया याद रखिएगा अगर परमात्मा के भाव रहेगा परिस्थिति कैसी भी पैदा हो वो करता है कि नहीं करता, लेकिन वो टूटी पत्थर को उठाएगा, आपका पत्थर भी मारेगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पर जो भाव है उसे पर छोड़ना और अपना कर्तव्य छोड़ना। एक बात कर, अब इसका एक दूसरा उदाहरण ले दू। अभी तो पति की बात बताए, पत्नी के सिर में दर्द है, गुरु जी आ गए, पत्नी का भी भाव है, गुरु जी चाहती हो गुरु जी का साथ दूंगा। अब देख लीजिए, आपके सिर में दर्द था, गुरु आया, गुरु की ये भाव था, दर्द गायब हो गया, चाय बनाया, और एक ऐसा आदमी आ जाए तो सिर में दर्द में हो भी दर्द। तो विज्ञान भी कहता है जहां भाव होता है वहां दर्द भी जाएगा, और जहां नहीं भाव है वहां
दर्द चालू हो गया।
तो जब ये भाव पैदा करोगे, ईश्वर की कितनी कृपा है कि मैं आज का दिन भेंट में मिला, आज मैं पढ़ा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, संगीत के माध्यम से आपको आनंदित कर सकता हूँ, कलाकार से कर सकता, उसकी कितनी कृपा है। कल क्या होगा, अरे कल परसों के साथ छोड़िए, जो आज हमारी रक्षा कर रहा है, जो कल रक्षा किया आज कर रहा है, वही आने वाला कल करेगा। इसलिए आज की जो कुछ है उस कर्तव्य का पालन करो, जो आज कर रहा है वो कल भी करेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग कल की चिंता में बैठे, कल क्या होगा, कल नाम की कोई चीज ही नहीं है, या विचार। और इसी बात को थोड़ा सा ले लीजिएगा, आज पूरा जगत मान गया हम आप जितने जिम्मेदार हैं, कम से कम मंदिर में हम आप जितने बैठे हैं सब जिम्मेदारी लेकर, जिम्मेदारी निभाते समय आप डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है, माँ है, पिता है, व्यापारी है, जो हम सब जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, छविदार जी हैं, आप लोग हैं, 7-8 साल पहले कॉलेज में मेरा लेक्चर था, 2-4 दिन पहले तबीयत खराब हो गई, मैंने कहा गला मेरा ठीक है, दो डॉक्टर लेकर के मैं बिल्डिंग और आया और प्रोफेसर
जी,
नहीं तो मैं बहाना कर सकता।
जी, जी,
जी, तो जब तक कर सको तब तक बहाना नहीं करना, नहीं वो कहेगा कि अरे हमने इतना दिया बहाना कर रहा। एक छोटी सी बात, बड़े प्यार की बात, मेरे पास एक संत आए, उन्होंने कहा स्वामी जी पहले लोग पूछते थे कि भाई चाय पी ले, दूध पी ले, रोटी खा ले, अभी तो कोई पूछता नहीं, मैं मनोवैज्ञानिक और थोड़ा फास्ट कर दिया, मैंने कहा पहले आप जेब में लोगों की भेंट पैसा रखते थे, कहा नहीं, तो जब आप भेंट नहीं लेते थे, हम लोग को होता दो साल भेंट नहीं लेना, परिभ्राजक में नियम परिभ्राजक में होता है, प्रवचन नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल करना, और मैं बाद में बता देता, मैंने कहा जब आप परिभ्राजक थे आप बोलते थे, कहा नहीं, आप पैदल चलते थे, जेब में पैसा रखते थे, कहा नहीं, तो कौन प्रबंध करता था, जब भूख लगी हाँ, अब भेंट लेते हो हाँ, तो जेब में पैसा रख के भगवान को कौन बोल रहा है, और भेंट खर्च करो दूध और चाय पियो, और जेब में जो पहले उसने जो प्रबंध किया वो भी था, और आज भेंट का प्रबंध उसने किया, और भेंट लेके चाहते हो, कोई दूध नहीं पूछता, कोई चाय नहीं पूछता, खरीद के पियो, अच्छा भी ठीक है, यही आपसे नहीं होगा तब भी वो मदद करेगा, और है तो उसका वो भगवान को मत चिल्लाओ कि भाई कैसे होगा, आते लोग मेरे पास, मैंने लड़की की शादी कर ली है, मैंने कहा प्रयास करो ईमानदारी से बताओ बैंक में कितना, ये सब खर्च कर दोगे इसी में चाह जाएगा, लेकिन पहले बचा के खर्च मत करो कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सत्यनारायण की कथा में क्या है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, सत्यनारायण की कथा में है क्या, कहा कुछ नहीं तो आपसे कहा मुझे मुझे बता बैंक में कितना, मैं चिल्लाऊंगा नहीं लेकिन खर्च करना। अगली बात तब आ जाए, महाराज जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो बताऊंगा आपके काय में देता हूँ, थोड़ी हंसी, महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं है, लड़की की शादी कर देखो, मैंने कहा मैं हाथ धो, मैं बड़े प्यार से मानूंगा, मैंने कहा ये लड़की किसकी है, कहते मेरी है, तो मैंने कहा मेरे से पूछ कर शादी किया तो जो पैसा मांग रही, मैंने कहा ये परमात्मा की प्रकृति है, सब हो जाएगा, सब हो जाए। परमात्मा है तू तो ट्रस्टी है या पैसा, ये पैसा भी परमात्मा ने दिया, लड़की भी दिया है, ये सब आप ट्रस्टी हो, पैसा भी संभाल लो, अब जहां तो जरूरत होगी वो देगा। अगर भरी भरी सभा में हाथ उठा करके खाली करके हाथ उठा करके द्रौपदी ने कहा तो दुशासन थक गया, अरे दुनिया दुशासन है, हाथ ऊंचा करके अपने गुरु को पुकारो तब हो जाएगा, दुनिया थक जाएगी, दुनिया थक जाएगी, लेकिन आपको कुछ कोई आपके लाभ जाने वाली, लेकिन आपको पकड़े बैंक बैंक में से बैंक और हाँ तो क्या जगह अब मैं क्या लेके आया, अच्छे घर का था सब कुछ था, लेकिन जब बुझाता है क्या लेकर आए आप, देखो मैं गुरु पहले वाली बात छोड़िए है कि नहीं, कर्म का सिद्धांत है, अब देखिए सब कुछ है मेरे पास तो बड़े प्यार से करता, आपके गुरु के पास तीन गाड़ी है तो मैं तो विवेकानंद हूँ, आपके पास तीन तो नहीं एक तो होनी चाहिए, पैदल बताया कर्म कर्म है कि नहीं, आपने 1 करोड़ का आश्रम बना दिया तो आपकी कोठी भी 1 करोड़ की होनी चाहिए, गुरु को तो बना दिया आपका, तो एक बात तो मैं कुछ चीजों को बहुत अच्छे ढंग से मानता हूँ, मैं यही चाहता हूँ गीता सुनीता की जो बात रखा कि आप सब अपने गुरु के साथ रहें, अपने भगवान के साथ रहें, किसी का खंडन नहीं करें, कुछ नहीं करें, और बड़े प्यार से कहता हूँ द्रौपदी की बात कोई मामूली बात नहीं है, सब कुछ वहां बैठे थे, पहले देखा इधर, पहले देखा इधर, पहले देखा इधर, फिर ये पकड़ा, मैं कहता हूं बस गुरु को देखो, गुरु की बात को सुनो और गुरु के सामने हाथ खोल दो, जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यही है गीता सुगीता, कुछ वैज्ञानिक कुछ विचार लिया, गीता की सबसे बड़ी बात यह है ज्ञान होने पर अर्जुन ने संन्यास नहीं लिया, फल का संन्यास लिया, तो आपको जो मैं विचार दे रहा हूं कपड़े से सन्यासी बनने के लिए नहीं, फल से सन्यासी, और आज के कर्तव्य का पालन करो, और विज्ञान कहता है आज जो कर्म कर रहे हैं वो कल मिलेगा मिलेगा, लेकिन फल की चिंता में बैठकर कर्तव्य का ही पालन नहीं करोगे तो कौन कर लेगा, इसलिए रोज उठो अपने गुरु को याद करो, नारायण को याद करो, लक्ष्मी को याद करो, पीर को याद करो, फकीर को याद करो, तापसी को याद करो, गंगा को याद करो, सबको याद करो, वही लोग याद करो, याद करके अपने ज्ञान को अपने कर्तव्य का पास, हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि कुछ भी हो जाए लेकिन आज के कर्तव्य पालन में मैं पलायन वादी होने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ये शक्ति मांगोगे और सबको साथ रहते हैं। द्रौपदी ने क्या किया ये समझने की बात है, सभी है भरी सभा में, इस जगत में सभी आपके साथ है, याद कीजिए इसी को जाके सिद्धांत दोहरा दो, द्रौपदी कहती है आप देर से क्यों आए, आपको पहले ही पुकार लेती कितने देर से होंगे, अर्थात जब हार जाओगे तब गुरु के सामने हाथ ऊंचा करते हो, अरे छोटी बंगला सब बताते हाथ ऊंचा करो इसलिए हारने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही अगर द्रौपदी पहले ही हाथ ऊंचा कर देती तो ये समस्या बहुत जल्दी, इसलिए सब कुछ रहते हुए मेरी जो विचारधारा आपकी कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कुछ कुछ सब कुछ रहते हुए हाथ खाली करके मांगो, उसमें जो कमी होगी वो सब पूरी हो जाएगी, सब पूरी हो जाएगी, उसमें कोई चिंता करने की बात, लड़का पढ़ेगा कैसे, शादी कैसे होगी, तो आपकी शादी कैसे होगी, उनकी कैसे होगी, क्या लोग है, लोग कहते महाराज जी लड़की बहुत अच्छी है विदा होगी तो रोटी नहीं खाएंगे, मैंने कहा यही बात तुम्हारी माँ भी बोलती थी, ये तो विदा करने के तुम्हारी माँ भी 50 साल साधु तुम्हारी माँ भी, अब ये जो 50 लोग आते सब मेरे सामने है कल उनका पंडाल एक बात होता तो सब कुछ वही है जा विचार के, इसलिए जो कर्तव्य पालन है मेरी बेटी है उसको अच्छा घर पर देना है, रोना है लेकिन प्रेम से रोना है, इससे घर पर अच्छा मिला, मुंह में रो के तो शादी का क्योंकि जा विचार करो, इसलिए मैं रोना पसंद करता लेकिन प्रेम कैसे भगवान मेरे साथ है, उनकी बड़ी कृपा, उनकी आज बड़ी कृपा है कि लक्ष्मी आज मंदिर में है, उनकी बड़ी कृपा है आप लोग मिले, उनकी बड़ी कृपा है कि आप सुने, तो मेरे आंखों में भी आंसू है, लेकिन एक कृपा का है, दुख का नहीं, ये प्रेम का आंसू है, इसलिए अपने कर्तव्य पालन में उसकी कृपा से आंसू बहाओ, हाय हाय करके आंसू न बहाओ। लोग कहते हैं हाय राम, मैं कहता हे राम बोलो, हाय राम बोलो, हे राम बोलो, हाय राम बोलने से, इसलिए हे कृष्ण बोलो, हाय कृष्ण बोलो। ये जो बताया ये मेरा परिवार है, हर तरह मैं आपके साथ हूँ, इसको समझिए, जीवन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। मैं बीच में बम्बई गया, वहाँ पता चला, थोड़ा हाथ जोड़ कर बताता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन होटल में जो घटना घट गई, अगर मैं वो पास होते तो अरे भगवान ने बचाया है, यही उसकी बड़ी कृपा है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको बचे हैं अच्छा काम कर आज प्रेजेंट देता है। तो लक्ष्मी नारायण के चरणों में कोट-कोट वंदन करते हुए और लक्ष्मी नारायण से मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, क्योंकि मैं थोड़ा जानता हूँ, मेरा जन्म 1935 का और मैं थोड़ा जानता हूँ, तो 2035 तक कैसे भी रहूँगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण चरणों में बैठ कर लक्ष्मी और नारायण को देखता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। अपना विचार बताता हूँ, अभी जो भी बोला घंटे आधे घंटे जो बोला सच कहता हूँ, आप सबको भगवान का स्वरूप समझ कर अपने को बालक मान के सुनाया है, ये नहीं सुनाया है कि मैं सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे, मैं तो आप सबको अपना माता पिता अपना नारायण से मान के सुनाया, इसलिए आपका बालक हो, सुनाने में भी बालक से भूल हो जाती है, तो आप बालक हो, हे मेरे बालक अपने बालक को माफ करना, कोट कोट दंडन।
भगवान हम सब सदा आपके बालक बने,
की बात कर लूँ
सदा आपके बालक बने रहे भगवान,
और आपकी आज्ञा से ही भगवान आपकी आज्ञा से थोड़ा सा जरा
Thank you.